आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। दो शब्द। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुस्यूत नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। पैराग्राफ चेंज। हिंदी रंगमंच के विकास से निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहां बनवा दी जाएं, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच की हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वह पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दीर्घ दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। वसंत 1958। मोहन राकेश। पात्र परिचय। अंबिका, ग्राम की एक वृद्धा। मल्लिका, उसकी पुत्री। कालिदास, कवि। दंतुल, राजपुरुष। मातुल, कवि मातुल। निक्षेप, ग्राम पुरुष। विलोम, ग्राम पुरुष। रंगिनी, नागरी। संगिनी, नागरी। अनुस्वार, अधिकारी। अनुनासिक, अधिकारी। प्रियंगु मंजरी, राजकन्या, कवि पत्नी। अंक एक। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ। दीवारें लकड़ी की हैं, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई हैं। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं, जिनमें मिट्टी के बुझे हुए दिए रखे हैं। बाई ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना ही दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू एवं हल्दी से कमल तथा शंख बनाए गए हैं। दाई ओर बड़ा सा झरोखा है, जहां से बीच बीच में बिजली कौंधती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर तीन चार बड़े बड़े कुंभ रखे हैं, जिन पर कालिख और काई जमी हैं। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिए गए हैं। झरोखों से सटा एक लकड़ी का आसन है, जिस पर बाघ छाल बिछी है। चूल्हे के निकट दो चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाज में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है, फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आ जाती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गईं, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर उसके कंधे पर सिर रख देती है। गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ। उसके केशों को चूमकर खड़ी होती हुई ठंड से सिहर जाती है। उपत्यकाएं सूखे वस्त्र कहाँ है माँ, और मैं भी तो
इस तरह खड़ी रही ना माँ
तो जुड़ा जाऊंगी।
तुम बोलती क्यों नहीं।
अंबिका उस पर सिर से पैर तक उसे एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है।
सूखे वस्त्र अंदर तल पर
हैं। मल्लिका घुटनों के बल बैठ कर
तुमने पहले से ही निकाल कर रख देती है।
अंदर को चले
गई थी कि दक्षिण से
तुम्हें पता था मैं भी जाऊंगी
पंक्तियों को,
और मैं जानती थी तुम चिंतित होगी।
और देखो सब वस्त्र भिगो आई हूँ।
द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती
है। सूखे वस्त्र कहाँ हैं
माँ, भीगने का तनिक
तरह खड़ी रही
भीगती नहीं
तो जुड़ा जाऊँ
वंचित रह जाती।
तुम बोलती क्यों
द्वार से टेक लगा लेती
है। आक्रोश की दृष्टि से
चारों ओर धुआरे मेघ घिराए थे।
मैं
जानती थी
वर्षा होगी,
और फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर
नीचे नीचे उतरती गई।
एक बार
अंबिका
मेरा
उस पर
सिर से पैर
भी हवा ने दृष्टि उड़ा दिया,
फिर बूंदे पड़ने लगी।
मल्लिका घुटनों के बल
बैठ कर उसके कंधे पर सिर रख
फिर आके तुम्हें बताती हूँ।
गई थी कि दक्षिण से
उड़कर
आदि बकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब
चली जाती है।
सूखे वस्त्र अंदर तल पर हैं।
हुए धान को
मल्लिका
एक कुंभ में डाल देती
है। पहले से ही निकाल
कर रखती है, और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल
अंदर को चले देती है।
अंदर के प्रकोष्ठ से
पता था
मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते
और मैं जानती थी तुम
बीच बीच में उसकी झलक
दिखाई दे जाती।
द्वार के पास मुड़कर अंबिका की ओर देखती
है। मल्लिका,
मुझे भीगने का तनिक
नील कमल की तरह
भीगती नहीं तो आज
आत्मवायु की तरह हल्का
द्वार से टेक लगा लेती है।
चारों ओर धुआरे मेघ घिराए
मैं चाहती थी
मैं जानती थी वर्षा होगी,
फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर
मेरा तो शरीर भी उतर रहा है माँ।
एक बार
मेरा पानी
इन वस्त्रों
हवा ने
उड़ा दिया,
फिर बूंदे पड़ने लगी।
चुभन के बाद अंबिका से आंखें मिल जाती हैं,
गुनगुनाने लगती हैं।
वस्त्र बदल लूं
फिर आके तुम्हें बताती हूँ।
वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ,
बहुत अनुभव।
गीले वस्त्र कहाँ डाल दूँ माँ,
नहीं रहने दूं।
चली जाती है
मृदु पवन
का उठकर फटके हुए धान को
एक कुंभ में डाल देती
चला
है।
चला दीप
और दूसरे कुंभ से नया धान निकाल लेती
है। तो
अंदर के प्रकोष्ठ से मल्लिका के शब्द सुनाई देते रहते हैं।
बीच बीच में
उसकी झलक भी दिखाई दे जाती है।
योगा
कुला नाम
मल्लिका
बाहर आ जाती है।
नील कमल की तरह
कोमल
और आर्द्र वायु की
तरह हल्का
और सौंदर्य
का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं
मैं चाहती थी
जैसे वह
सौंदर्य में
अस्पर्श्य होते हुए
भी
मानसर
मेरा तो शरीर भी
मैं उसे छू
सकती थी,
कि देख सकती
कितना पानी
पी सकती
इन वस्त्रों ने पिया।
तभी मुझे अनुभव हुआ
शीत
की चुभन के बाद
जो भावना को
कविता का रूप
देता है।
गुनगुनाने लगती
है। मैं जीवन में पहली बार
समझ
पाई
कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को
सहलाती
गीले मालाओं में
कहां डाल
हो जाती है।
यहीं रहने
क्यों
किसी को अवन
तन मन की अपेक्षा
आकाश में बनते
मीठ चला
दे चित्रों
का
अपहृत
में
हो रहता
है। चेतस
तो
क्या
बात है माँ
इस तरह चुप
से इंद्र चापे
अंबिका
पर देख रही हो
मैं काम कर रही हूँ।
मलत्वी
योगा
काम तो तुम
हर समय करती हो
बाहर आ जाती
है, हर समय इस तरह चुप नहीं रहती।
आज के
अंबिका
चला दीप
और दूसरे
कुंभ से
नया धान निकाल लेती
है। चेतस
तो
अंदर के प्रजास
आ बैठती
है, कभी नहीं भूल
सकती अंबिका चुपचाप
सौंदर्य का
ऐसा साक्षात्कार
मल्लिका
उसके हाथ से
मैंने कभी नहीं
छाछ ले लेती
जैसे वह सौंदर्य अस्पर्श्य होते हुए भी मानसल हो। मैं उसे छू सकती थी देख सकती थी पी सकती थी। तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है।
मैं जीवन में पहली बार समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखरों को सहलाती मेघमालाओं में खो जाती है। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मीटते चित्रों का इतना मोह हो रहता है। क्या बात है माँ, इस तरह चुप क्यों हो? अंबिका, देख रही हो मैं काम कर रही हूँ। मल्लिका, काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय इस तरह चुप नहीं रहती। अंबिका के पास आ बैठती है। अंबिका चुपचाप थान फटकती रहती है। मल्लिका उसके हाथ से छाछ ले लेती है।